वैष्णव के आविर्भाव तथा तिरोभाव दोनों ही अति महत्वपूर्ण है। भगवान के हम साधन तो केवल आविर्भाव ही मनाते हैं, भगवान की जन्माष्टमी नृसिंह चतुर्थी जिस दिन भगवान का आविर्भाव उसी को केवल पालन करते हैं, लेकिन वैष्णव की दोनों ही इनके आविर्भाव तथा तिरोभाव। यदि जैसे ही अभी भजन गा रहे तो नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं लिखे हैं कि वैष्णव की जो तिरोभाव व उनकी जो अंतर्ध्यान होना हमारे लिए अति दुखदायी है। क्या कहते वो, पाषाणे कुटीब माथा अनले पशिब गौरांग गुणेर निधि कुथाए गेले पाबो। मैं पत्थर में सिर को फोड़ डालूंगा, आग में प्रवेश कर जाऊंगा, लेकिन वैष्णव के विच्छेद का दुख मैं सहन नहीं कर सकता। ये जो भजन गा रहे थे ये श्रीनिवास आचार्य के तिरोभाव पर नरोत्तम दास ठाकुर ने भजन की रचना किए थे। चैतन्य महाप्रभु ने भी रामानंद राय को पूछे, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर। इस संसार में जितनी प्रकार के दुख है समस्त दुख में से सबसे जो बड़ा दुख हो क्या है, तो महाप्रभु ने कहे कि वैष्णव विच्छेद दुख बिना दुख नाही आर। जो किसी महान आचार्यों के वियोग हो जाता है, निद्रा में प्रवेश कर जाते हैं, जो हमारे लिए वो सबसे बड़ा दुख है, इससे बड़ा दुख और कुछ है संसार में नहीं है। लेकिन साथ ही साथ भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि ये सोचना गलत है यदि कोई सोचता कि किसी वैष्णव का मृत्यु हो गया है। ही रीजन सील हू थिंक्स दैट वैष्णव मस्ट डाई, वैष्णव को भी मरते नहीं है, वैष्णव मरकर भी अमर रहते हैं। जब तक इस धरा पर रहते हैं भगवान के प्रचार कार्य में, हरिनाम के प्रचार कार्य में लगे रहते हैं, जो नित्रालय में प्रवेश कर जाते हैं फिर भगवान के नित्य धाम में उनकी नित्य परिकर के रूप में उनके सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए वैष्णव की आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। और आज विशेष रूप में कृष्ण प्रेम की मूर्तिमंत अवतार कौन, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, तो उनकी आज तिरोभाव तिथि है। इनकी जो आविर्भाव के बारे में, क्योंकि छह गोस्वामी की बात में जब ये तीनों प्रभु की एक साथ में वैष्णव धर्म का प्रचार बा सनातन ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को फिर आगे बढ़ाने के लिए तीनों के आविर्भाव हुआ था, नरोत्तम दास, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य, इनको कहते प्रभु त्रय, ये तीन प्रभु। लेकिन इनकी जो आविर्भाव के बारे में विशेष, नरोत्तम दास ठाकुर जो आविर्भाव होंगे ये धरा पर उसकी बारे में, इसके बारे में पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सूचना दिए थे, गौरांग महाप्रभु ने स्वयं इसकी सूचना देकर गए थे। जब उन्होंने रूप सनातन को उद्धार किए रामकली में, उद्धार कर जो उन्होंने पहले बार वृंदावन गश्त में आ रहे थे बंगाल होकर, तो उन्होंने कान्हाई नटसाल तक पहुंचा। कान्हाई नटसाल कितने लोग गए, कान्हाई नटसाल बंगाल और बिहार की बॉर्डर में आता है, कान्हाई नटसाला बड़े सुंदर स्थान है गंगा के किनारे, तो कान्हाई नटसाला प्रसिद्ध है क्योंकि महाप्रभु ने कहा जाता है कि गया से जब दीक्षा लेकर आए थे कान्हाई नटसाला में सबसे पहले दर्शन किया था, किनको, भगवान श्री कृष्ण की विच्छेद का दुख वहीं से पहले उनको अनुभव हुआ, वह कृष्ण मुझे दर्शन देकर मुझे आलिंगन करके अंतर्ध्यान हो गए, तो इसलिए वो स्थान बड़े महत्वपूर्ण है। लेकिन सनातन गोस्वामी ने भी कहे कि महाप्रभु जो जा रहे थे वृंदावन की गश्त में आ रहे थे तो उनके साथ में लाखों लोग साथ में चल रहे थे, तो सनातन गोस्वामी को समझाया था कि महाप्रभु की तीर्थ यात्रा से लाखों लोगों के साथ में जाना ठीक नहीं, क्योंकि उस समय सब मुसलमान शासक थे, सोचते थे कुछ हानि भी महाप्रभु कुछ अनिष्ट कर सकते रास्ता में। इसलिए महाप्रभु ने कन्हाई नटसाला तक आए और एक ब्रह्मचारी नृसिंहानंद ब्रह्मचारी वो भी ध्यान में देखते हुए अभी बता दिया था इस टाइम गौरांग महाप्रभु कन्हाई नटसाला से वापस आए, वृंदावन नहीं जाएंगे। इसलिए कान्हाई नटसाला में जब पहुंचे हैं महाप्रभु ने वहाँ नृत्य कीर्तन करके ही जो कर रहे थे, हठात कीर्तन के बीच में रुककर जोर जोर से पुकारने लगे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। अरे सब भक्त लोग सोचने के लिए कहे कि पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ को शायद नरोत्तम कहकर पुकार रहे हैं, कुछ हो सकता है ऐसा, लेकिन जब वो प्रकृतिस्थ हुए फिर नित्यानंद प्रभु उनको जिज्ञासा करने पर बाद नित्यानंद प्रभु स्वयं महाप्रभु ने कहे कि चलिए गंगा के किनारे चलते हैं, गंगा किनारे कुतुबपुर, कुतुबपुर वहाँ गेंदर हाट गाँव वहाँ चलेंगे और गंगा स्नान करेंगे। तो थोड़ा आश्चर्यचकित होकर नित्यानंद प्रभु उनकी तरफ देखे तो महाप्रभु ने कहने लगे, जैसे प्रेम विलास में वर्णन की जाती है कि आपनार गुण तुम, नित्यानंद प्रभु को उन्होंने कहने लगे कि महाप्रभु हे नित्यानंद तुम स्वयं का महिमा स्वयं नहीं जानते हो। जब तुम संन्यास लेने के बाद जो मेरे साथ में पूरी जा रहे थे हो और रास्ते में तुम जितने कृष्ण विरह में रोए हो, जितने होते रोते थे विप्रलम्भ भाव से, तो वो सब सभी जो प्रेम का प्रेम को जो आपकी जो अनिताय आपका जो राधा कृष्ण के प्रति प्रेम उसको मैं बांध कर रखा, गंठुली बांध कर रखा है, उसको लेकर मैं पद्मा नदी में समर्पण करूँगा। प्रभु कहे श्रीपाद बुझी करह भावना, आपनार गुण तुमी ना जानो आपना, नीलाचल जाइते जत कांदि आछ तुमि, सेई प्रेमा दिने दिने बांधिया छि आमि, से प्रेम राखिब आमि पद्मावती निरे, नरोत्तम नामे पात्र दिब आमि तारे, प्रेमे जन्म हबे तार आमा विद्यमाने, एखने राखिया जाब पद्मावती स्थाने। तो महाप्रभु ने कहे कि ये कृष्ण प्रेम की गंठोली को मैं लेकर पद्मा नदी में समर्पण करना चाहता हूँ। भविष्य में इस प्रेम को, कृष्ण प्रेम की जो गंठोली है इसको प्राप्त करने के अधिकारी कौन बनेगा? नरोत्तम दास नामक के विशेष महात्मा व महान संत की आविर्भाव होगा, जिनको पद्मा नदी मेरे आदेश से प्रेम की गंठोली समर्पण कर देगा। ऐसे कहकर नित्यानंद को साथ में लेकर महाप्रभु ने गए और जाकर पद्मावती में दोनों गौर निताय कुतुबपुर के पास वहाँ जय गंगा में उतरे और स्नान किए। स्नान करने के साथ साथ महाप्रभु ने पद्मावती को संबोधित करते हुए फिर भी कहे, प्रभु कहे पद्मावती धर प्रेम लह, नरोत्तम नामे पात्र प्रेम तारे देह, नित्यानंद सह प्रेम राखिल तोया स्थाने, जत्न करिया तुमि राखिब गोपने। महाप्रभु ने कहे कि हे पद्मावती ये कृष्ण प्रेम की गंठोली मैं तुझे अर्पण करता हूँ, इसको बड़े सावधानी से रखना, और एक नरोत्तम नाम के विशेष महात्मा जब तुम्हारे जल में स्नान के लिए पधारेंगे तो प्रेम की गंठोली उन्हीं को अर्पण कर देना। पद्मावती ने कहा कि नरोत्तम कौन है, मैं कैसे पहुँचाऊँ, दुनिया लोग आते स्नान करने, इसमें मैं इसमें से नरोत्तम कौन को पहचानूंगा कैसे और उसको कैसे प्रेम की गंठोली समर्पण करूंगा। तभी महाप्रभु ने कहे कि हंसने लायक है कि तुमको पहचान करने के अपने आप पहचान होगा, जब ऐसे ही कोई व्यक्ति आएगा जब तुम्हारे जल को स्पर्श करते ही तुम तरंगायित होने लगोगे, तुम्हारे शरीर में उफान आ जाएगा, तुम पुलकित हो जाओगे, समझ लेना कि ये व्यक्ति नरोत्तम है। अभी ऐसे कहकर महाप्रभु ने फिर नित्यानंद प्रभु के साथ में लेके फिर वापस आए हैं बंगाल में होकर, फिर महाप्रभु नीलाचल में व पुरी में वापस आ गए। लेकिन इसी के बीच जैसे महाप्रभु ने भविष्यवाणी किए तो गौरांग महाप्रभु के विद्यमान जब थे इस धरा पर, नित्यानंद भी थे तभी 1635 शताब्द में इन्होंने बांग्लादेश में आज खेतुरी गांव के नाम प्रसिद्ध है, पद्मा नदी से प्रेम तुली से लगभग 1 माइल दूर पर गांव है खेतुरी। तो खेतुरी गांव में वहां गोपालपुर प्रगणा जो कि राजशाही डिस्ट्रिक्ट की गोपालपुर प्रगणा जो एरिया पर एक सब डिवीजन जैसे, उसके एक छोटे राजा थे, एक उस एरिया के जो राजा थे उनका नाम था कृष्णानंद दत्त और उनके भाई के नाम था पुरुषोत्तम, दोनों भाई थे। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी ताऊ दो थे, कौन कौन? हिरण्य और गोवर्धन। तो उसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर के पिताजी के नाम था कृष्णानंद दत्त और उनके और एक भाई थे उनके नाम था पुरुषोत्तम, दोनों मिलकर राज्य शासन चलाते थे। और कृष्णानंद दत्त की जो पत्नी बा नरोत्तम दास ठाकुर की जो माताजी थे उनके नाम था नारायणी देवी, ये माघ पूर्णिमा के दिन नरोत्तम दास ठाकुर नारायणी देवी की गर्भ से जन्म लिए थे 1635 शताब्द में। लेकिन जन्म से देखने में बड़े सुंदर थे नरोत्तम, यदि सांवले वर्ण के थे लेकिन राजकुमार के समान बहुत सुंदर उनकी चेहरा था। और उन्होंने बचपन से ही लेकिन कृष्ण जो महान भक्त बनेंगे उसके सारे परिचय महापुरुष के सारे लक्षण उनके शरीर में था। महापुरुष के जो 32 लक्षण होता है शरीर अजान उलंबित भुजौ हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कनक आवदा सभी, तो सभी महापुरुष के लक्षण उनके 32 लक्षण उनके शरीर में प्रतीत हो रहा था। जन्म से ही उन्होंने विषय के प्रति आसक्त रहे। भक्ति रत्नाकर में कहते कि नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर आकुमार ब्रह्मचारी सर्वतीर्थदर्शी, वो आकुमार ब्रह्मचारी रहे, ब्रह्मचारी उन्होंने विषय के प्रति उदास रहे हैं, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी विषय के प्रति उदास रहते थे। और उन्होंने उनके पिताजी ने इनको पढ़ाई करने के लिए राजपुत्र थे पढ़ाई करने के लिए पर्सनल टीचर इनके लिए नियुक्त कर दिए। लेकिन पढ़ते तो जो संस्कृत ग्रामर आदि सीख रहे थे, लेकिन प्रत्येक दिन संध्या समय में उन्होंने एक महान वैष्णव रहते थे उस खेतुरी में, उनके नाम था कृष्णदास, तो उनके पास जाते थे, जाकर वहाँ गौरव कथा श्रवण करते थे। हैं गौरांग महाप्रभु कथाओं को श्रवण करने से उनके शरीर में पूरे विकार अष्टसाथी का विकार प्रकट हो जाता था। उन्होंने कभी कभी रोते रोते मूर्छित हो जाते थे, तो इस स्थिति को देखकर सभी चिंतित हो गए। उनके माता पिता सोचने लगे कि ये तो लग रहा है कि रघुनाथ दास की तरफ इसके कभी घर बाहर छोड़ के भागेगा ये। और सत कुसत उन्होंने बार बार घर से भागने के लिए प्रयास करते थे, क्योंकि महाप्रभु की जो गुणगान को श्रवण किए हैं गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशीला हृदय निर्मल भेल तार है, जिसके कारण में गौरांग महाप्रभु की लीलाएं प्रवेश करता है तो उसके हृदय निर्मल हो जाता है। और ऐसा ही उसकी आसक्त संसार के प्रति अनासक्त होकर इसको गौरव प्रेम जिसको प्राप्त हो गया संसार में कैसे मन लग सकता है। तभी बचपन से ही जब इन्होंने अन्नप्राशन के समय में उनके माता पिता भी उनको कुछ अन्न खिलाना चाहते खीर खिलाने के लिए प्रयास करते थे, मुख बंद करके रखे नहीं खा रहे थे। तभी ज्योतिष ने कहा कि भला ये भविष्य में इसके गणना करके मैं देख रहा हूँ कि महान भक्त बनेगा, महान भक्त और संसार के प्रति उदासीन बनेगा, तो इसको कृष्ण प्रसाद ला के दो, हो सकता है वो खाएगा। तो तुरंत ही कृष्णानंद दत्ता अपने घर में कृष्ण विग्रह पूजा करते थे, तो महाप्रसाद लाकर जो दिए तुरंत ही बड़े हर्ष के साथ स्वीकार किए। कौन? नरोत्तम दास ठाकुर। इसे बचपन से ही उन्होंने किसी के संग माने बच्चों के साथ मिलजुल नहीं करते थे, अलग से रहते थे, अपने माने भगवान की चिंतन करना गौरांग की चिंतन करना ऐसे ही उदासीन रहते थे। 12 साल की उम्र जब हुआ उनकी तब एक दिन नित्यानंद प्रभु सपने में आए। नित्यानंद प्रभु सपने में आके कहे कि नरोत्तम तुम्हारे लिए महाप्रभु ने प्रेम की गंठोली छोड़ दी है, कहाँ? पद्मा नदी में। तुम जाकर उस प्रेम की गंठोली को स्वीकार करो, तुम्हारे लिए विशेष रूप में महाप्रभु रखे हैं। दूसरे दिन ने सुबह सुबह बिना बोले किसी को सीधे चले गए पद्मा नदी में। जाकर जब पद्मा नदी के जल में स्पर्श करते ही तो पद्मा नदी जल में उफान आ गया है, समुद्र में से लहड़ी आता है सही तरंगाई तो होकर पद्मावती पूरे नरोत्तम को पानी के अंदर भसा के ले गया है, सीधे नरोत्तम अंदर गए, फिर बाहर लहड़ी जाता है फिर किनारे आ जाता है, फिर किनारे पर लाकर नरोत्तम को छोड़ दिया। अभी पद्मा नदी ने प्रेम की गंठोली समर्पण कर दिया, किनको? नरोत्तम को। नरोत्तम पहले सांवले वर्ण के देखते थे, लेकिन जब से पद्मा नदी से स्नान कर किनारे आए उनके शरीर का वर्ण बदल गया है। तब तक कांचन गौरांग गौरांग महाप्रभु के शरीर की कांति जैसे ऐसी पूरे गौरव वर्ण को धारण करके और उन्मत्त नृत्य करने लगे हैं। जय गौरांग नीता है गौर नीता है गौ मने कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हैं। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे, जे जन गौरांग भजे सही तो हमारा प्राण रे हैं। नृत्य करने लगे अद्भुत उन्मत्त नृत्य करने लगे पद्मा नदी के किनारे, ना उनको कोई शोध बोध नहीं था। यहाँ से घर में सब लोग ढूंढने लगे, अरे नरोत्तम कहाँ गया, कहाँ गया, नूरू बोलते थे बचपन में उनको, नूरू कहाँ है पिताजी, माताजी चारों साइड ढूंढते ढूंढते थक गए। चारों दिग में चौकीदार उसको भेजे हैं, ढूंढो कहाँ, भाग नहीं गया तो वृंदावन। तो फिर उसको जाए देखते देखते सब कोई व्यक्ति तो नाच रहा है पद्मा नदी के किनारे हैं। एक देखे सेवक लोग ने कही कि लेकिन ये तो कलर तो शरीर का कलर तो इसका है पूरा, ये तो गोरे बनने का दिख रहा है, तो वो तो सांवले बनने की था नरोत्तम। लेकिन जब सन्निकट में गए पूरा चेहरा को देखे तो बोले नहीं यही तो नरोत्तम है, लेकिन इसका शरीर का कलर कैसे बदल गया। बड़ा आश्चर्यचकित हो भागते भाग गया कि उनके पिताजी को कहे। फिर उनके पिताजी गए और बहुत सावधानी से इनको पकड़ के लेके आए कहाँ, घर में। तो उस दिन से नरोत्तम को और घर में रहना खाना पीना कुछ शोधबोध नहीं रहा, दिन रात नाचते थे। भज गौरंग गह गौरांग लह गौरांगे र नाम रे, जे जन गौरांग भजे सही तो हमारा प्राण रे। तो उन्मत्त नृत्य कर रहे थे, तो ऐसे ही खाना पीना शोधबोध नहीं। तो माता पिता तो सोचे कि इसको कोई वायु का व्यवहार है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी जब प्रेम की विकार को प्रकट कराए थे, लोग भी सोचते थे कि माता शची को कहते थे कि इसको वायु का कुछ बीमारी हो गया है, डॉक्टर लगाओ। तो कविराज वैद्य को बुलाते थे, लेकिन इनको बीमारी थोड़ी था, ये तो कृष्ण प्रेम की बीमारी इनको पकड़ लिया। दिन रात खान पान छोड़कर नित्य न आए नृत्य कीर्तन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ तो भाग जाएगा कहीं सोचकर उनके पिताजी ने उनके पहरेदार लगा दिए, चौकीदार लगा दिए, ऐसे जगन्नाथ दास गोस्वामी कहीं भाग जाएंगे तो 8 चौकीदार लगाए थे उनके पिताजी। ऐसे इनको भी आम पर माता पिता 7-8 लोग इनको जब गार्ड लगा दिए कहीं भाग न जाएंगे जैसे। लेकिन इसके बीच में मैं बहुत ब्रीफली कह रहा हूँ क्योंकि समय के आधार पर बोलना पड़ेगा, तो नरोत्तम चरित्र तो बहुत विशाल है। तभी इसके बीच में नरोत्तम दास ठाकुर कहे कि माता जी पिताजी हमको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा ही मेरे को रघुनाथ दास गोस्वामी के हैं बुद्धि अपनाना पड़ेगा है। महाप्रभु ने रघुनाथ दास को कहते कि विषय है मरकटो वैराग्य ना करो लोको देखानिया, यथाजुक्त विषय भुंज अनासक्त हया, अंतरे निष्ठा बाहे लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार। तो कि मुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा, अभी अंतर में निष्ठा और बाहर में लोको व्यवहार। फिर आस्ते आस्ते नरोत्तम दास ठाकुर लेकिन नॉर्मल हो गए, फिर पिताजी की माताजी के साथ बात करने लगे, घर में जाने लगे और उनके मैनेजमेंट के जो राजकार्य में थोड़ा पिताजी को सहायता करने लगे। तो पिताजी माता सोची कि नरू तो हमारा अच्छा हो गया, सो सोच के वो ढिला कर दिए, चौकीदार सोच ढिला कर दिए। तो लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में आस्ते आस्ते जो बंगाल के जो नवाब थे उनको भी पता लगा, जिनकी अंडर में ये अधीनस्थ राजा थे कृष्णानंद दत्त। तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटा को थोड़ा मैं देखना चाहता हूँ, मैं खबर दे भेजे उन्होंने कि तुम्हारे एक सुंदर बेटा में सुना कि बहुत गुणवान रूपवान पुत्र है। नवाब ने सोचा कि उसको भी कुछ राजकार्य में अच्छे कार्य में लगा देंगे, कोई मिनिस्टर की पद दे देंगे वा कुछ करेंगे उसको, यदि अच्छे क्वालिफाइड है तो। उन्होंने नरोत्तम को देखने के लिए सिपाही भेजे हैं, 2 सिपाही घोड़ा अच्छा से घोड़ा को डेकोरेट करके भेज दे कि उनको लेके आओ, किसको, नरोत्तम को लेके आओ, हमें इसको थोड़ा देखेंगे कैसे हैं, यदि योग्य होगा तो उसको भी कोई मिनिस्टर की पद दे देंगे, अच्छा रहेगा रूप सनातन की तरफ ये भी हैं, अच्छा शासन कर सकता, सहयोग कर सकता। तो इसी प्रकार जब बादशाह के जो उनके सैनिक पहुँचे और कृष्णानंद दत्त के साथ बादशाह के अच्छा संबंध था, उन्होंने सोचा कि ठीक है बादशाह भेज देते पुत्र को उनके साथ जाने दो हैं। एक विशेष घोड़े में इनको बैठा दिए, किनको, नरोत्तम बैठे। आधा रास्ता में जब आए जंगल के रास्ता में तो कुछ इनको धमक चमका के वो चौकीदार लोगों को जो आए थे हैं, कुछ उनको पैसा भी दे के बस वहीं से चंपट भाग गए जंगल में हैं। जंगल में निकल गए, दौड़ते रहे हैं, भागे सीधे घोड़ा से जंपिंग करके भागे जंगल में। ये लोग क्या करेंगे, दोनों खड़े रहे तो क्या देखेंगे, क्या करेंगे। तो तुरंत खबर मिले भाग की, फिर वापस आया कि कहीं तुम्हारे लड़के भाग गया कहाँ, आधा रास्ता में घोड़ा से जंपिंग करके तो भाग गए दौड़ के हैं। नरोत्तम दास ठाकुर तो बड़े प्रेम में बिहोल होकर हैं, गौरांग की चिंतन करके ही भाग रहे थे जंगल में। उनको कोई शोध बोध नहीं था, कहीं कट्टा है कोई पत्थर है हैं, जंपिंग करते दौड़ कर भाग रहे थे हैं। गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, गौरांग अंग बोलिते होबे पुलक शरीर करताल बजाना नहीं है तो मत बजाओ। कब हरी हरी बोली ते ना यने बहे नीरा हरी हरी बोली ते ना यने बहे कबे हमे निताय चंदे करुणा होइबे संसार बासना मोरो मने तुच्छ संसार बसना मन तुच्छ विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन विषय छाड़िया तो नरोत्तम दास ठाकुर भागने लगे हैं सीधे जंगल के रास्ते में भागते भागते हैं 15 दिन में वृंदावन पहुंचे। कहाँ से? बांग्लादेश से, खेतुरी ग्राम से भाग के वहाँ से आए। रास्ते में 3 बार वो 4 बार कहीं कोई दे दिया तो थोड़ा अपने आप कोई दूध दे दिया पी लेते थे, बाकी कहीं हैं किसको मांगने के लिए टाइम नहीं था उनको, बोझे कि खाने के लिए किसको मांगने के लिए नहीं हैं, खाने के लिए नहीं जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। भागे सीधे। एक दिन तो बड़े क्लांत होकर रास्ता में मार्ग में मूर्छित होकर गिर पड़े एक वृक्ष के नीचे। विश्राम ले रहे थे, पूरे शरीर के शोध बहुत कुछ नहीं था, गौरांग महाप्रभु को देखा नहीं गया। स्वयं एक ग्वाल बाल के रूप में, नहीं सॉरी, एक ब्राह्मण के वेश में, सन्यासी ब्राह्मण वेश में एक लोटा दूध हाथ में लेकर आके पहुँचे। कहे कि नरोत्तम, लो ये दूध तुम्हारे लिए लाया, इसको पी लो, तुम्हारे शरीर का सारे क्लांति मिट जाएगा। एक बार बोले नरोत्तम, एक बार आँख खोले देखे, लेकिन इतनी क्लांत फिर सो गए। तो दो तीन बार प्रयास किए वो ब्राह्मण ने, सन्यासी ब्राह्मण ने प्रयास कर देखे, उठते नहीं, तो फिर वो लोटा रख कर भाग गए, क्योंकि कोई फिर देखेगा मुझे पहचान के इधर कैसे मैं आया। तो महाप्रभु तो अंतर दूध की लोटा रख कर चले गए, लेकिन तुरंत ही स्वरूप और सनातन दोनों गोस्वामी प्रकट हुए। प्रकट होकर उनको जगाए, किनको? नरोत्तम को। भाई कि नरोत्तम, तुम्हारे लिए देखो स्वयं गौरांग महाप्रभु ने ये दूध की लोटा लेकर आए थे, इसको तुम पी लो, तुम्हारे शरीर का सभी प्रकार की क्लांति और दुख मिट जाएगा। कहने पर नरोत्तम ने उठे और उस दूध की लोटा को दूध को पी लिए लोटा से, शरीर में सारे क्लांति जाते रहा। और रूप सनातन तो दोनों इनको कल मार्ग निर्देशन देकर वृंदावन कैसे जाना है मार्ग बताकर फिर अंतर ध्यान हो गए। तो रूप सनातन के विच्छेद में रोते रोते फिर नरोत्तम दास ठाकुर जैसे मार्ग उन्होंने बताया ऐसे ही दूध को पीने के बाद फिर वाराणसी प्रयाग इलाहाबाद होकर पूरे राजमार्ग में आकर पहुंच गए। कहाँ? वृंदावन विश्राम घाट में आकर स्नान कर रहे थे। स्नान करने के समय में इनको वहाँ के लोकल जो ब्राह्मण लोग ने बातचीत करते हुए सोचे कि अभी थोड़े दिन में कौन अंतर्ध्यान हो गया, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों अंतर्ध्यान हो चुके हैं, लीला में प्रवेश कर गए। तो इनके सिर में वज्रपात हुआ, किनके? नरोत्तम के सिर में। नरोत्तम गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर ने बड़े विवल होकर प्रेम में रो रहे थे, बोले कि किया मेरा आने का क्या लाभ हुआ, सोच रहे थे कि मैं यमुना में ही डूब के यहीं शरीर विसर्जन कर दूंगा। पाषाण कुटीब माथा अनड़े पशिब गौरांग गुणेर निधि कुथा गले पाब। ऐसे ही रोकर बहुत रो रहे थे, लेकिन उसी समय में दो मैसेंजर पहुंच गए वृंदावन से, दो ब्राह्मण और दूत आए हैं जिनको जीव गोस्वामी ने भेजा था, क्योंकि जीव गोस्वामी को स्वप्न में आकर रूप और सनातन कहे कि देखो ये नरोत्तम आ रहा है। पहले श्रीनिवास आचार्य आ चुके थे, श्रीनिवास आचार्य जीव गोस्वामी के पास में आकर रहते थे, तभी कहे कि नरोत्तम आ रहा है, विश्राम घाट में जाकर उसको लेकर आओ, वो बहुत रो रहा है रूप और सनातन हमारा विच्छेद में, तो इसको लेके आओ। तो जीव गोस्वामी दोनों लोग भेजे थे और दोनों जाकर उनको ढूंढे, और उनको ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि ये तो रो रहे थे, इनके भाव और इनके विच्छेद को देखकर उनके शरीर की कांति और सब देखकर वो पहचान गए। उनको पूछिए आप नरोत्तम हो, खेतरी ग्राम से आए? तो हम बोले हाँ, मैं वही अधम हूँ, अभागा हूँ, रूप सनातन के विच्छेद मुझे सता रहा है, रो रहे थे। तो उनको बोले कि ठीक है, हम दोनों आपको ले जाने के लिए आए हैं, वृंदावन से हमको जीव गोस्वामी ने भेजा आपको लेके जाने। फिर रोते रोते कहे कि उनको कैसे पता लगा, नहीं उन्होंने रूप सनातन ही सपने में उनको ये बात कहे। तो और तो पूरे भाव में विहोड़ होकर रूप सनातन की चिंतन करते हुए, जीव गोस्वामी के चरण कमल को चिंतन करते हुए दोनों के साथ नरोत्तम दास चल दिए। आकर जीव गोस्वामी के चरण में गोविंद देव के मंदिर में, तो उसी समय जीव गोस्वामी और श्रीनिवास आचार्य दोनों प्रतीक्षा कर रहे थे नरोत्तम कब आएंगे, वो दर्शन के लिए पधारे थे। उसी समय नरोत्तम भी पधारे और जीव गोस्वामी के चरण में जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए रोते रोते उनके चरण को ही अभिषेक कर दिए असुर के जल से। जीव गोस्वामी को उठाए, आलिंगन किए, कहे कि धैर्य धारण करो, गोविंद देव के दर्शन करो। दर्शन करके भाव विहोल हुए, गोविंद देव की महाप्रसाद सेवन किए, लेकिन उनकी मन था लोकनाथ के चरण में, लोकनाथ लोकेरा जीवे न, क्योंकि नरोत्तम को पहले ही नित्यानंद प्रभु सूचना दिए थे कि तुम्हारे जो आध्यात्मिक गुरु, तुम वृंदावन जाओ, तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु कौन बनेंगे, लोकनाथ गोस्वामी, वही तुम्हारे उन्हीं के चरण कमल को आश्रय करके रहना, ये महाप्रभु की इच्छा है, वही तुम्हारे गुरु बनेंगे सदगुरु, जन्मे जन्मे प्रभु से। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर के मन तो पूरा छटपटा रह रहा था, वो सोच रहे थे कब लोकनाथ के दर्शन होगा। तभी जीव गोस्वामी उनके मन भाव को समझते हुए तो वो तो भजन करते थे कहाँ, उमराहा गांव में, किशोरी कुंड में लोकनाथ गोस्वामी रहते थे, उधर राधा विनोद की सेवा में हैं तत्पर रहते थे। तो उनको लेकर वहाँ पहुँचाए, जीव गोस्वामी स्वयं साथ में लेकर नरोत्तम को गए, नरोत्तम के साथ में लेके गए। कहे कि लोकनाथ देखो ये जो राजपुत्र है ये नरोत्तम, हाँ ये कृष्णानंद दत्त की एकमात्र पुत्र है, राजपुत्र है, वो आपके चरण कमल को आश्रय करने के लिए आया है, आपसे ही दीक्षा प्राप्त करने की उसकी इच्छा है। लोकनाथ गोस्वामी तो प्रतिज्ञा ले रखे थे कि मैं जिंदगी में किसी के शिष्य नहीं बनाऊंगा, वो अपने को बड़े दीनहीन पतित मानते थे, कहते नहीं मैंने किसी के शिष्य बनाने के योग्य नहीं हूँ। लेकिन महाप्रभु भी थोड़े दिन पहले उनको स्वप्नादेश दिए थे कि एक नरोत्तम नाम के एक राजपुत्र पधारेगा, तुम इसको शिष्य रूप में स्वीकार करना, ये मेरे आदेश है। तो लोकनाथ उस समय सोचते कि मेरा प्रतिज्ञा क्या होगा, फिर मैंने जो प्रतिज्ञा किया था कि मैं किसी को शिष्य नहीं स्वीकार करूंगा, मेरे प्रतिज्ञा का क्या होगा। नरोत्तम दास ठाकुर जो पहुंचे जीव गोस्वामी के साथ में है, लोकनाथ गोस्वामी कहे कि आप ही बड़ा महान विद्वान हो, पंडित हो, तो आप इसको क्यों शिष्य नहीं बना लेते, आप ही इसको दिखा दे कि शिष्य बना लो, इसको कहे जीव गोस्वामी को। जीव गोस्वामी कहे कि यह आपसे आश्रय लेने के लिए आया है, मैं तो लाके केवल पहुंचा दिया आपके चरण में। तभी नरोत्तम दास ठाकुर कहे कि जीव गोस्वामी की तरफ, हैं प्रभु आप अपने स्थान में जाइए राधा दामोदर में, मैं यहीं पर प्रतीक्षा करूंगा, जब तक इनकी कृपा पात्र नहीं बनूंगा तब तक स्थान से नहीं जाऊंगा। ये कहकर जीव गोस्वामी तो वापस आए नरोत्तम ने जहाँ लोकनाथ गोस्वामी की भजन कुटीर था, थोड़े दूर में कुछ दूर छोड़ के अपना कुटिया बना लिया, घास में एक कुटिया बनाकर वहाँ रहने लगे। प्रत्येक दिन गुरुदेव उठने के पहले आते थे, आकर उस कुटिया को परिक्रमा करते थे, प्रणाम करते थे, और फिर देखे तो जो भी कुछ सेवा के लिए प्रार्थना करते थे उन्होंने भी नहीं करते, भागो भाग यहाँ से, गेट आउट, कोई सेवा नहीं है, कौन कहते थे लोकनाथ को, कोई भी सेवा का मौका नहीं, भागो यहाँ से, मैं खुद ही उद्धार होऊंगा नहीं कि मेरे को ठीक है, तुम कहाँ से आए, चलो यहाँ से, कोई सेवा स्वीकार नहीं करते थे। तो बोले क्या करूँ फिर, ये तो कोई सेवा भी स्वीकार नहीं कर रहे, दंड रोते रोने पर चले जाए यहाँ चलो। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने फिर प्लान बनाया कृष्णा की सेवा करना है। देखे कि ये प्रत्येक दिन लोकनाथ गोस्वामी किस जंगल में किसी एरिया में जाते हैं, निबटने जाते हैं मलमूत्र त्यागने के लिए। तो रात्रि में उठकर वो उनके पहले लोकनाथ गोस्वामी वहाँ जाने के पहले नरोत्तम दास जाकर उस स्थान को, सब उस एरिया को झाड़ू बुहार करके साफ कर देते थे, हैं वहाँ पानी लगकर मिट्टी का बर्तन में पानी भर के रख देते थे, हैं और पूरे पास में सब व्यवस्था जैसे एरिया में। लोकनाथ गोस्वामी जाते थे एक दो दिन तीन दिन तक, गए बोलते कि ब्रजवासी ऐसे करता होगा तो डाउट नहीं, लेकिन रेगुलर ऐसे जो कई दिनों तक होने लगा, 10-15 दिन तक, तो बोले कि कौन ऐसे सेवा, इतनी निकृष्ट सेवा कौन करता है, जहाँ मैं लेटरिन करी चली जाता हूँ काल देखते पूरे एकदम साफ स्थान में पूरा रहे, कुछ नहीं है, कोई गंदे नहीं है, गोबर फोबर लगा गया और पूरे स्थान पवित्र है। तो बार करते रहे, तो एक दिन निबटने के बाद जाकर दूसरे झाड़ी में दूर में जाकर छुप गए, ये कौन करता है काम देखता हूँ। तो दूसरे झाड़ी से निकले कौन, नरोत्तम, नरोत्तम दास आए और ये जहाँ इनके सब मल मूत्र सब साफ कर दिए पूरे, हैं साफ करके वहाँ गोबर पानी डाल के और हैं झाड़ू लगाने लगे। तो भागते आए कि अपने दूसरे साइड से फिर निकाल के आकर पीछे से आकर उनको पकड़ लिए, कौन लोकनाथ को, बहुत डांटने लगे, तुमको कौन बोला ऐसे कार्य करने के लिए, हैं मैं तुमको मना किया कितनी बार, तुम भागो यहाँ से, तुम क्या करते इधर, इतने निकृष्ट सेवा क्यों, तुमको कौन बोला करने के लिए, मेरे मलमूत्र परिष्कार करने लगे तुम, चलो यहाँ से। बहुत डांटे डांटने के, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर वैद्यता की है प्रतिमूर्ति थे, तुरंत ही मूर्छित होकर उनके चरण में गिर पड़े, कौन उनके चरण में, किसके चरण में गिरे, लोकनाथ गोस्वामी के चरण में गिर पड़े। वो कवि थे, हम कोई बात कहते तो वो पद्य हमारा मुख से पद्य के रूप में निकलता है, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जो कवि होते हैं कविता के रूप में उनके मुख से निकलता है। तुरंत ही उन्होंने चरण कमल को पकड़ के गए, मैंने पकड़ गिर वहीं पर रोते रोते हैं कहने लगे, हा हा प्रभु लोकनाथ रख पद द्वंदे कृपा दृष्टे चाहो यदि होई आनंदे मनोवांछा सिद्धि तब तबे हो पूर्ण तृष्णा यथाए चैतन्य मिले यथा राधा कृष्ण तुमि ना करिले दया के करिबे आर मनेर वासना पूर्ण कर एइबार ए दिन संसारे मोर आर केह नाही कृपा करी निज पद तले देह ठाई राधा कृष्ण लीला गुण गाँव रात्र दिने नरोत्तम बांछा पूर्ण नहे तुया बिने चरण कमल रोने लगे आ लोकनाथ के हृदय पिघल गया। तो उन्होंने कहे कि ये महाप्रभु का भी आदेश है कि ये तो पहले से ही महाप्रभु मुझे बोल चुके ये नरोत्तम आएगा राजपुत्र, तुझे इसको शिष्य बनाना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। तो फिर कहे कि ठीक है नरोत्तम, तुमने मुझे हैं जीत लिया, जाओ जमुना में स्नान करके आओ। हैं स्नान करने भेजे, स्नान करके आए तो थोड़े उनको लोकनाथ गोस्वामी ने कृष्ण मंत्र हैं उनको कृष्ण मंत्र में दीक्षित करके कहे कि तुम जाओ जीव गोस्वामी को खबर दे दो कि हाँ मैं तुमको स्वीकार कर लिया शिष्य के रूप में। तो फिर वो आए आकर जीव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन फिर उनको भेज दिए जीव गोस्वामी जाओ फिर गुरु की सेवा करो, तुमने दीक्षा से लिया उनकी सेवा करो। तो फिर आ गए तो अभी क्या करेंगे, सेवा तो नहीं ले, अभी तो शिष्य बन के सेवा लेना पड़ेगा। तो फिर वो रहकर गुरु महाराज की सेवा करने लगे, किनकी, लोकनाथ गोस्वामी की। तो लोकनाथ गोस्वामी इनको रागानुग भजन पद्धति राधा कृष्ण की कैसे भगा सेवा करना, राधा विनोद की सेवा सिखाए, इनको श्रृंगार करना सेवा करना, उनको मदद करने लगे। लेकिन गुरु आदेश में जब प्रत्येक दिन बड़े भाव विहोड़ होकर हैं नाम जपा करते थे और गुरु ने जैसे इनको कहा सेवा करने के, सेवा में तत्पर रहते थे, उसे राधा रानी प्रसन्न होकर एक दिन इनको दर्शन दिए, किनको, नरोत्तम को। राधा रानी कहे कि नरोत्तम तुम्हारी सेवा में मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे गुरु निष्ठा और सेवा में, इसलिए तुझे मैं एक सेवा दे रहा हूँ। मेरे सखी चंपकलता प्रत्येक दिन राधा श्यामा मेरे श्याम सुंदर के लिए क्या बनाता, राबड़ी बनाती है, तो इसे राबड़ी बनाने में उसको सहायता करने के लिए मैं तुमको नियुक्त कर देती हूँ। तुम प्रत्येक दिन राबड़ी बनाना, किसके लिए, श्याम सुंदर के लिए, हैं ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानव से करीबे। ये कहाँ से लाएंगे राबड़ी की, दूध कहाँ से लाएंगे बड़ी रखते, इसलिए मन में हैं प्रतिष्ठानपुर के ब्राह्मण जैसे करता था गोदावरी नदी के किनारे मन में स्वीट राइस पर खिला रहा था, वैसे ही इन्होंने भी मन में ही ध्यान कर ध्यान में ही दूध लाकर माने जब चूल्हा लगाते थे फिर दूध की पतीला बैठता दूध डाल के फिर इसको आए राबड़ी बनाते थे। तो एक दिन वैसे राबड़ी मन में ध्यान में बना रहे थे राबड़ी हैं, राबड़ी बनाते बनाते ऐसे ही उसको बार बार घुमाना पड़ता दूध को राबड़ी बनाने के लिए। लेकिन उस समय देख रहे थे कि श्याम सुंदर राधा रानी श्याम सुंदर भी साथ में आए और सखियों के साथ में, हठात अन्य मनस्क होकर राधा रानी को देख रहे थे, मतलब राधा श्याम सुंदर के चरण कमल को निहार रहे थे, यहाँ से दूध भी आउट रहे थे, तो उन्हें मनस्क होने के कारण दूध में ज़्यादा उफान आकर उनके हाथ में गिर गया, जल गया हाथ, ध्यान में देख रहे थे तो जल गया, तो आँख खुल गई तो देखे कि सतकुसत हाथ जला हुआ है। तो फिर गए कुत्ते थाने पर अपने गुरुदेव वैष्णव लोग ने देखा, लोकनाथ गोस्वामी ने पूछा ये क्या हुआ तुम्हारा हाथ जल गया कैसे, तो उन्होंने बताया कि अन्य मनस्क हो गया, राधा रानी ने मुझे सेवा दिए थे ऐसे ही राबड़ी बनाने की। तब सब भक्त लोग ने समझ गए कि इनके भजन में सिद्धि प्राप्त कर लिए। तो अभी सारे वैष्णव लोग ने बड़े प्रसन्न हुए, जीव गोस्वामी के पास में खबर आया, जीव गोस्वामी ने कहे कि सब वैष्णव से सिद्धांत सलाह लेकर लोकनाथ गोस्वामी से इनको फिर उसी दिन से किया पुकारे ठाकुर महाशय, उपाधि उनको दिया गया श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। तो भाई इसी प्रकार उन्होंने जो गुरु के साथ ने भजन में सिद्धि हुई है, सिद्धि प्राप्त की है, और पहले से श्यामानंद प्रभु ने भी सिद्धि हमने राधा रानी को प्राप्त किए थे, नुपुर प्राप्त करके वो भी जीवन सफल बनाए। श्रीनिवास आचार्य भागवत की महान आचार्य थे, इसलिए उनको आचार्य उपाधि दी गई श्रीनिवास आचार्य, और श्यामानंद श्यामा की कृपा राधा रानी की कृपा प्राप्त होने के कारण दुखी कृष्णदास को क्या टाइम मैंने जीव गोस्वामी ने कहे कि आज से तुम्हारा नाम और कृष्णदास दुखी कृष्णदास नहीं, तुमको कौन दुखी कहेगा, जिसके प्रति श्यामा के आनंद में तुम आनंदित हो गए हो, इसलिए तुमको श्यामानंद कहेंगे लोग। हैं लेकिन तीनों जब भजन में सिद्धि प्राप्त कर ली है तभी फिर जीव गोस्वामी ने कहेगी प्रचार में करना, प्रचार में जाना पड़ेगा, कभी अब प्रचार में करना प्रचार जाना पड़ेगा, इसलिए पहला संकीर्तन पार्टी ऑर्गेनाइज कर दिए, कौन, जीव गोस्वामी ने। लोकनाथ गोस्वामी भी सुना हमने, कहे नरोत्तम को जाओ तुम अभी जीव गोस्वामी के अंडर में रहो और प्रचार करो, जो कहें जो बोलते वो करो, हैं तुम अभी सिद्ध बन गए हो, अभी साधन का तुमको आवश्यकता नहीं, तुम जैसे गुरु के निर्देशन, तुम्हारा शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी के निर्देशन में वहाँ भागवत पढ़ाई करो और जाओ जो कह रहे वही करो। तो तीनों बैल का गाड़ी में लकड़ी का सिंधुक है, लकड़ी में सिंधुक बक्स बनाकर उसके अंदर सब किताब गोस्वामी लोगों की जो लिखा हुआ पुस्तक रख के संकीर्तन में निकले हैं। इसलिए जानना चाहिए कि संकीर्तन कोई नया भक्तों की केवल सेवा नहीं है, लेकिन न्यू भक्त आते तो उनकी भेज दो संकीर्तन में है, लेकिन ये संकीर्तन का जो सेवा, ये देखो ये तीनों सिद्ध महात्मा थे, नित्य परिकर थे हैं। ये चंपक मंजरी थे, राधारानी ने इनको कहा तुम चंपक मंजरी हो, आज से तुमको सर मेरे गौण में चंपक मंजरी रूप में पुकारेंगे लोग हैं। श्यामानंद प्रभु कनक मंजरी मणि मंजरी थे, कौन हैं श्रीनिवास ठाकुर, तीनों नित्य परिकर है भगवान। फिर भी इनको सब वो भेजा गया कहाँ जाने के लिए, संकीर्तन करो, बुक बैग लेके जाओ, हैं बुक मैंने गाड़ी में पूरा पैकअप करके भेजे। और तो आए लीडर बना गया, श्रीनिवास आचार्य जी को लीडर बना दिया गया, तो और ये दोनों उनको सहयोगी थे। तो आते आते फिर बिहार के बॉर्डर में पहुंच गए हैं, बी वो कौन सा वीर हमीर वहाँ के राजा रहते थे वन विष्णुपुर के राजा। तो उन्होंने क्या करता था कि एक चौप रखता था, क्या तांत्रिक रखता था, जो रास्ते में आते थे उनको पता लगा लेता कि इनके पास पैसा है कि नहीं। तांत्रिक ये बताते कि हाँ इनके पास में बहुत संपत्ति है कैलकुलेशन करके। तो ये जो संकीर्तन पार्टी जा रहे थे बैल के गाड़ी में पूरा बॉक्स लोडिंग करके लेके जा रहे थे कीर्तन करते हुए नाचते, तांत्रिक ने कहा कि ये जो बॉक्स में रखे हैं ये लोग बैलगाड़ी के ऊपर, कितना संपत्ति इसमें कैलकुलेशन नहीं हो रहा, हो पा रहा है, ये तो अरब करोड़ कोई भी इसके कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, इतनी अमूल्य संपत्ति इसके अंदर है। राजा तो बड़ा खुश हो गया, बोला इसका लूटेंगे हैं। तो ये लोग जो आ रहे थे पहले मैसेंजर भेज दे, बोला कि आप लोग आज यहीं पर रहो, भजन कीर्तन करो साथ लोग, यहीं राजा की गार्डन में रहो, हैं आपका खाना पीना व्यवस्था सो राजा की तरफ में होगा सो। लेकिन रात में यहाँ पर रुकवा दिया इनको, ये लोग बेचारे कुकिंग वुकिंग करिए भगवान को भोग लगाई खाए और भजन कीर्तन लेट नाइट तक हुआ, तो सोए थोड़ा विश्राम किए, ये जो विश्राम कर रहे थे तो वो बक्स को उठा के ले गया, कौन वीर हमीर हैं। सुबह उठकर देखे कि तो ये किताब की बक्स नहीं है, सब रोने लगे, सब वज्रपात हुआ। लेकिन श्रीनिवास आचार्य ने कहे कि देखो मैं लीडर हूँ, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तो मैं यहाँ पर रहकर इन किताबों को ढूंढूंगा, आप दोनों जाओ प्रचार में आगे हैं, बंगालर उड़ीसा में आप लोग प्रचार करने के लिए, जैसे बांग्लादेश में और उड़ीसा में आदेश दिया थे जीव गोस्वामी, आप लोग जाओ, मैं किताब को यहाँ पर उद्धार करके फिर जाऊँगा। जानते थे किताब लेके कौन क्या करेगा, कोई धन सोच कर लेगी फिर बाद में अपने देगा वापस करेगा, तो इसलिए प्रतीक्षा की है। गांव के लोग जानते थे किताब तो राजा ही लिया, और कौन चोरी कर गया इधर, लेकिन कोई भय से बोलते नहीं थे। श्रीनिवास आचार्य जी को श्री राजा के एक अच्छा गुण था कि भागवत सुनने में इनको उसको इच्छा था, तो इसलिए उन्होंने जाकर राजा के पास में भागवत कहने लगे, कौन श्रीनिवास आचार्य जी भागवत व्याख्या करने लगे। राजा इतनी आश्चर्यचकित हो गया, इतनी भागवत की व्याख्या में पहले सुना था, लेकिन ये महात्मा जैसे भागवत की व्याख्या कर रहे हैं तो कोई कह था, बड़े बिहोड़ होकर समझ गए कि ये पुस्तक से वो यही महात्मा की है, हैं तो आके चरण में गिरे, कहे कि महात्मा जी मेरे लोग ने कुछ पुस्तक कहीं से उठा के लेके आए हैं, आप देख सकते पुस्तक आपका है ना क्या। श्रीनिवास आचार्य को ले गए, श्रीनिवास आचार्य देख कर तो बड़ा आश्चर्य, बोले कि हाँ बोले अपराध क्षमा करना, ये हम ले आए थे, हमारा ऐसा ही स्वभाव बना हुआ है लूटने का, हम तो धन सोचकर लूट के लाए थे, लेकिन इसका अंदर क्या था, पुस्तक था, आप पुस्तक आप ले सकते हैं हैं, लेकिन मुझे मेरी भी उद्धार कीजिए, कहकर उनके चरण में रोते रोते राजा ने गिरा। फिर श्रीनिवास आचार्य समझ गए महाप्रभु की कुछ लीला था कि इसको उद्धार करना, किसको वीर हमीर को हैं। और राजा शिष्य बन गया तो वहाँ सारे प्रजा भी बन गए हैं, हजार संख्या में इनके जोते मंत्री सेनापति सैनिक राज प्रजा लोग भी सब शिष्य बन गए, किनके श्रीनिवास आचार्य की। तो खबर आया फिर खेतुरी ग्राम में, नरोत्तम दास ठाकुर तो श्यामानंद के साथ में खेतुरी में पहुँच गए थे, और वहाँ से थोड़ा दिन रहे, उनके पिताजी माताजी देखे कि अरे नरोत्तम नूरू हमारा वापस आया, लेकिन तो पहले की नूरू नहीं था, राजपुत्र की आज तो एक लंगूठा पहना हुआ और एक वस्त्र उतरी है, और दूसरा भी उसका मित्र श्यामानंद वो भी ऐसा ही है। तो थोड़े दिन श्यामानंद वहाँ रहकर श्यामानंद उड़ीसा में आ गए प्रचार में, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जो पता लगा कि किताब को उद्धार है, उन्होंने बड़े बहुत बड़े महोत्सव मनाया है। अपने पिताजी को कहा कृष्णानंद दत्त को, तो बहुत बड़े उनके उसके लिए महोत्सव मनाए। लेकिन इसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर ने सोचे कि मैं थोड़ा गौरव महा गौरांग महाप्रभु की लीला स्थलियों को दर्शन करूँ। मायापुर में आकर सभी लीला स्थलियों को दर्शन किए, सारे वर्णन करना संभव नहीं। वहाँ से उसके बाद फिर उन्होंने ओडिशा में आए, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय में, और वहाँ आकर श्यामानंद को मिले, श्यामानंद प्रभु को मिले। श्यामानंद प्रभु के साथ में उन्होंने उनकी प्रचार क्षेत्र नृसिंहपुर में आए हैं। उन्होंने भी श्यामानंद भी बहुत नास्तिकों को उद्धार किए हैं उड़ीसा में। इसके बाद जो वापस गए, वापस आके फिर उन्होंने भी सोचा कि अभी मेरे को प्रचार कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए हैं। इसलिए खेतुरी ग्राम में आकर उन्हें प्रचार शुरुआत किए हैं। उन्हें सब ब्राह्मणों को भी दीक्षा देने लगे, ये कायस्थ थे। तो जब ये ब्राह्मण को दिखाने लगे, तो ब्राह्मण लोग इकट्ठी होकर इनको अनिष्ट करने के लिए सोच बने, ये क्या है, कायस्थ परिवार में शूद्र परिवार में जन्म लिया है, ये आके ब्राह्मण को शिष्य बना रहा है। सो ब्राह्मण लोग इनके अगेंस्ट होने लगे, किनके, नरोत्तम दास ठाकुर के। एक स्मार्ट ब्राह्मण था, उसके नाम था शिवानंद, शिवानंद भट्टाचार्य। तो उन्होंने काली की पूजा करता था, दशहरा के दिन बलि पूजा बलि चढ़ाने के लिए माँ के पास में उनके लड़का को रामकृष्ण को भेजा था, जाके सो एकाठी करके लेके आओ है, बकरी भेड़ और भैंस सबको एकाठी के लेके आने, माँ के पास में बलि दिया जाएंगे। वो बेचारा सबको एकाठी करके लेके आ रहा था, यहाँ रास्ता में नरोत्तम दास ठाकुर जा रहे थे गंगा में स्नान करने, उनके साथ में उनके शिष्य थे रामचंद्र कविराज थे, जो कि श्रीनिवास आचार्य शिष्य थे। रामचंद्र कविराज बड़े प्रिय थे, किनको, कई भजन में उन्होंने लिखते हैं, रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास हैं, कहते कि यदि पुनर्मर्या दोबारा मरी सब हे प्रभु मुझे जन्म दोगे संसार में, तो रामचंद्र के संग जैसे मुझे प्राप्त हो जाए। तो साथ में जा रहे, तो वो वहाँ से भेड़ बकरी भैंस सब लेके आ रहा था, तो कहे कि ये क्या कर रहे हो तुम, ना मेरे पिताजी ने कहा माँ के पास में बलि चढ़ाएंगे, इनको सब लेके जा रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर को समझाए, कहे कि अरे तू जानते हैं इन काटने से कितने पाप होगा, ये जीवात्मा उनके शरीर में है, हैं तुम भी जैसे हमको एक शरीर मिला है मनुष्य का, उसको भी ऐसे पशु के शरीर मिल गया, हम पशु काटने से फिर हमको भी अगला शरीर अगला जन्म पशु के शरीर मिलेगा हैं। और उसको समझाए तब तो ऐसे करना ठीक नहीं है, अब तुम भगवान की भजन करो, जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना, भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना, हमको गोलोक वृंदावन व वैकुंठ में जाना हमारे जीवन का लक्ष्य, तुम समझाए। और 2 मिनट प्रीचिंग किए, क्योंकि उनकी बात शुद्धता था, पवित्रता है, प्यूरिटी इज दी फोर्स, भक्त बन गया वो कृष्ण। तो रामकृष्ण फिर सबको छोड़ दिया, नरोत्तम दास कहे थे सब जो बांध के लेके आ रहा सबको छोड़ दिया, छोड़ के चुपचाप घर में और गंगा में स्नान किया, स्नान करके वैष्णव तिलक लगाया, और नरोत्तम दास ठाकुर ने इसको क्या सिखा दिए, कैसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, महामंत्र की जप कीर्तन सिखा दिए। घर में खाली हाथ में हरे कृष्ण करते करते पहुंच गया, तो पिताजी कहे कि ये क्या है, हरे कृष्ण ये क्या है, तिलक लगाया वैष्णव तिलक, क्या किया तुम, कहाँ है भेड़ बकरा ये भैंस कहाँ है, माँ के पास में बलि देने के लिए भेजा था ना तुमको लाने के लिए। बोले मैं और आपका काम नहीं करने वाला हूँ, मैं अभी महान संत नरोत्तम दास ठाकुर से दीक्षा प्राप्त करके मैं अपने को बड़े धन्य मानता हूँ। तो कहे सर्वनाश किया तुम, हमारा सारे परिवार का कलंक लगाया है, तेरे सर्वनाश होगा, बहुत डांटने लगा उसके पिताजी ने, गेट आउट घर से निकालो। फिर वो बोले मुझे जाने के लिए खाली आपको इन्फॉर्म करने के लिए आया, मैं जा रहा हूँ। तो फिर ऐसे जो घटना होने लगे, ऐसे एक घटना ऐसे कई घटना होने लगे, ऐसे ब्राह्मण लोग ब्राह्मण के लड़के से आकर नरोत्तम दास ठाकुर से दीक्षा लेने लगे। तो सारे ब्राह्मण मिलकर कहे कि इसको कैसे भी समाप्त करना पड़ेगा। तो इसलिए लोकल जो राजा थे नरसिंह देव, और उनकी एक दिग्विजय पंडित को रूपनारायण को लेकर आए, बोले इसको युक्ति में परास्त करना, शास्त्र युक्ति में है, ब्राह्मण घर में मैंने यदि जन्म नहीं तो गुरु नहीं बन सकता। उनका कहना था कि जो ब्राह्मण गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्राह्मण घर में जन्म लेना चाहिए, ब्राह्मण हो ब्राह्मण नहीं है तो ब्राह्मण को गुरु शिष्य नहीं बनाना चाहिए, ये युक्ति में इनको परास्त करने के लिए लेके आ रहे थे। रामचंद्र के नरोत्तम दास ठाकुर अत्यंत वृद्ध हो गए थे, रामचंद्र कविराज और उनके शिष्य थे गंगा नारायण चक्रवर्ती, दोनों प्लान बनाया इनको नरोत्तम दास ठाकुर तक पहुंचने के लिए, इसका पहले इनका काम करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने गांव के लास्ट में जहां से गांव के एंट्रेंस होगा वहां पर दोनों साइड में दो दुकान खोल दिए, एक मटका की दुकान है मटके और दूसरे के पान का दुकान, दो साइड खोल के बैठ गए। जानते कि पंडित लोग जो आते स्मार्त पंडित, इनको दो चीज़ जरूरत है, वो किसी के हाथ से खाएंगे नहीं, कुकिंग करके खाएंगे,
स्वयं खाएंगे और खाने के बाद क्या खाते, पान खाते। तो उधर नदी था, नदी किनारे तो गांव से प्रवेश कर रहे थे, तो दोनों बैठे। सतकुश तो आए कि गांव में किनारे में रुके, उधर बरगद बहुत बड़ा विशाल पेड़ के नीचे रुके, बरगद के पेड़ के नीचे। और देखिए अरे दुकान तो ही पास में ही है, जाओ जाओ खरीद के लाओ, हैं मटका लेके आओ, सब सब सरंजाम जो खरीदने के लिए आए उनका लोग। तो ये लोग ने संस्कृत में बात की उनके साथ, बोले अरे मटका बेच रहा है संस्कृत में बात कर रहा है और पान बेच रहा है वो भी संस्कृत। तो होते होते जो थोड़े थोड़े बात करते करते बस जुक्ति छिड़ गया है, जुक्ति में उस लोग को हरा दिए उनको। ये तो चुपचाप वापस गए, सामान क्या खरीदेंगे, बल्कि ये तो दो ये गांव कैसा है मैं पता नहीं, ये तो पान बेचने वाला और मटका बेचने वाला वो संस्कृत में बात करते हैं, हमको परास्ती कर दिए जुक्ति में, हैं वैष्णव तिलक लगाए और कहते कि भगवान विष्णु ही मायावादी के मायावादी भाषा सुनी ले है राम को, तो सब जुक्ति में हम परास्त हो गए, उनसे कुछ जवाब नहीं दे पाए। फिर रूप स्वयं दिग्विजय पंडित जो था रूपनारायण वो भी आए, राजा भी आए और उनसे बातचीत करते करते वो भी सारे परास्त हो गए जुक्ति में। तो कहे कि आप लोग ऐसे सारे जुक्ति कहाँ से सीखा, कौन आपका गुरु है? बोले हम नरोत्तमदास ठाकुर महाशय हैं, जो जगत गुरु नरोत्तमदास ठाकुर के हैं, अत्यंत निकृष्ट हैं, निकृष्ट से निकृष्ट भृत्य, उनके चरण को आश्रय करके उनसे ही जो सुने थे थोड़ा बहुत वही आपको बताए। तो बोले अच्छा, अरे इनके शिष्यों की तो ऐसा ही चला है, शिष्यों की ऐसा ही ज्ञान है, और नरोत्तमदास ठाकुर कैसे होंगे, वहाँ जाना नहीं, यहीं से वापस चलो। तो वापस आए, लेकिन चंडी माँ चंडी को सहन नहीं हुआ, रात्रि में भी दोनों को दिग्विजय रूपनारायण को और राजा को नरसिंहदेव को सपने में आए, कही तुम लोग हैं नरोत्तमदास ठाकुर को हित करने के लिए गए थे हो, मैं तुमको क्षमा नहीं करूँगी, तुमको जान से मार डालूंगी, हैं तुम लोग जाओ जाकर नरोत्तमदास चरण में गिर कर अपराध क्षमा मांगो, उसके शिष्य तो स्वीकार करो यदि तुम हमको जान से रखना चाहते हो, नहीं तो तुमको समक्ष में समाप्त कर दूंगी। भयभीत होकर दोनों फिर दूसरे दिन में आए नरोत्तमदास ठाकुर, अपने पूजा करके विग्रह की, तो उनको जाके प्रार्थना की है कि कृपा करके हमको शिष्य के रूप में स्वीकार करो, हमारी उद्धार करो। नरोत्तमदास ठाकुर कहे थे आप तो महान ब्राह्मण हो, वैष्णव हो आप, दिग्विजय, मैं तो मूर्ख हूँ, अत्यंत पतित हूँ, मैं कैसे आपको आश्रय दूँ, नहीं नहीं ये माँ के आदेश है। फिर नरोत्तमदास ठाकुर ने बहुत दैन्यता के साथ स्वीकार किए। लेकिन ऐसे होते होते खिचड़ी आ गया आपके, चलो शांत, क्योंकि आज तिरोभाव है लास्ट लाभ। तो ऐसे कई लड़ाई है, लेकिन खेतरी ग्राम में भी उन्होंने विग्रहों की स्थापना किया, कौन नरोत्तमदास ठाकुर, जिस छह विग्रह एक ही नहीं है, गौरांग बल्लभीकांत ब्रजमोहन कृष्ण हे राधे हे राधिका रमण, ऐसे छह विग्रहों की स्थापना की है उन्होंने एक साथ में खेतरी ग्राम खेतरी में है, इसको कहते प्रेमतुली नाम रखी, वहाँ पर छह विग्रहों को मंदिर निर्माण करके वहाँ विग्रहों की स्थापना की है। उस विग्रह में उस उत्सव में सभी लोग इकट्ठी हुए थे, जानवा माता नित्यानंद प्रभु के जो पत्नी वो जानवा माता भी परिकर सपरिकर पधारे, वीरभद्र प्रभु आदि, श्यामानंद प्रभु भी उड़ीसा से रसिकानंद को साथ में लेकर आए, श्रीनिवास आचार्य भी अपने शिष्य रामचंद्र कविराज आदि सबको लेकर पहुँचे, हजार हजार भक्तों की समागम हुआ। नरोत्तमदास ठाकुर गौरव पूर्णिमा का दिन में इन विग्रहों को प्रतिष्ठित किए, आचार्य के रूप में श्रीनिवास आचार्य इस विग्रह की प्रतिष्ठा कार्य लिए, श्यामानंद प्रभु ने वैष्णव के सत्कार करते थे, वैष्णव के जो आते थे उनको इन्वाइट करना, उनके चरण धोना, इनके लिए खान पान की व्यवस्था करना, किचन के इंचार्ज स्वयं जानवा माता ने किचन डिपार्टमेंट संभालते, बहुत बड़े महोत्सव हुआ। नरोत्तमदास ठाकुर स्वयं भजन गाते थे, कीर्तन गाते थे, गौराण हाटी उनके जो प्रसिद्ध कीर्तन, तो उन्होंने कीर्तन जब स्वयं लीडिंग करते थे, हजार हजार भक्त कीर्तन में नाच रहे थे और सभी लोग देखे कि कीर्तन के बीच में फिर कौन प्रकट हो गए, पंचतत्व प्रकट हो गए, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौरव भक्त वृंद है, कीर्तन के बीच में गौरांग महाप्रभु को प्रकट हो देखकर, नित्यानंद को देखकर सभी तो भाव विहोड़ होकर और नृत्य करने लगे। जानो माता भी आश्चर्यचकित होगी आकर देखे, सभी अपने अपने काम छोड़ के आगे देखे, अरे ये क्या चल रहा है, स्वयं गौरांग नित्यानंद अद्वैत शिवास गदाधर सभी नृत्य कर रहे हैं, मुकुंद आदि सभी इनको देखकर नृत्य करते हुए प्रेम में बिहोड़ होकर सभी उन्मत्त नृत्य करने लगे भक्त लोग हैं, सब शोधबोध भूल गए और ऐसे ही नृत्य करते करते सब कौन मूर्छित हो गिरता था कोई है। तो थोड़े से कुछ समय कई घंटे कीर्तन के बाद कीर्तन के बीच में
अंतर्ध्यान हो गए। कौन? जैसे ही प्रकट हुए थे ऐसे ही फिर अंतर्ध्यान हो गए गौरांग महाप्रभु। अद्यावधि नित्य लीला करें गोरा राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रमाणित किए कि गौरांग महाप्रभु की लीला अभी भी चल रहा है। यदि कोई कीर्तनिया है नरोत्तम दास ठाकुर की तरफ, फिर महाप्रभु भी आविर्भाव हो सकते हैं। पंचतत्व आविर्भाव अभी होने वाले कहाँ, मायापुर में। तो इसलिए वो नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन में साक्षात प्रकट होकर नृत्य किए थे। इसके बाद ये महोत्सव के थोड़े दिन में आस्ते आस्ते फिर अस्वस्थ होने लगे नरोत्तम दास ठाकुर। उनके शिष्य थे गंगा नारायण चक्रवर्ती, उनके गांव गंभीला, नदी गंगा नदी के किनारे गुरुजी की सेवा करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से बहुत रिक्वेस्ट करके इनको अपने गांव में ले गए, लेके अपने घर में रखने लगे। लेकिन गौरा प्रत्येक दिन उन्होंने इच्छा था कि गंगा में स्नान करने के लिए, एक दिन गंगा में स्नान करते ही हठात उन्होंने अस्वस्थ, इतनी अस्वस्थ हो गए और बैठ गए, बस उठने का शक्ति नहीं था और कुछ नहीं, ऐसे स्तंभित हो गए और सो देखे कि वही शरीर छूट गया जैसे लगा। असो स्मार्थ ब्राह्मण एकाटी हो गए, बोले अरे देखा हाँ, बड़ा कृष्ण कृष्ण करता था, जा मरने का टाइम तो भगवान के नाम मुख से आया नहीं बस गया हैं, बड़ा कृष्ण कृष्ण दिखा रहा था ऐसे कही बहुत किससे, बोले देखा हैं साधन करी भजन करी मरते जान ले, मरने के समय तो भगवान के नाम उच्चारण नहीं हुआ और क्या भजन दिखा रहा है। ब्राह्मण को शिष्य बनाने का यही फल मिला है, शूद्र होकर ब्राह्मण को शिष्य बनाता था हैं। कहे कि बहुत निंदा करने लगे, तो गंगा नारायण चक्रवर्ती ने बहुत रोने लगे, हे गुरुदेव आप ऐसा क्यों, आपके निंदा श्रवण करने के लिए मैं आपको लेके आया इधर, क्या हुआ, कृपा करके इनको तो उद्धार करके जाइए, आपके निंदा कर रहे तो फिर इनका भी सर्वनाश होगा, आप तो पतित पावन हो, ये मूर्खों को भी उद्धार कीजिए। बहुत रोने इतना कहकर जब उन्होंने प्रार्थना की है चरण में गिरे, तुरंत ही फिर हैं गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौरांग कहा कि तुरंत खड़ा हो गए। कौन? नरोत्तम दास ठाकुर। अरे ये जी कर देखकर तो ब्राह्मण जो भाग गए, डर के सब भाग गए। अरे फिर लेकिन फिर दूसरे दिन सब जो निंदा किए थे सब भाग के आगे माफी मांगने लगे, नरोत्तम चरण में गिरे, क्योंकि माफ करना आप निश्चित रूप में महापुरुष हो, हम अपराध किए हैं हैं। और सौख्य मामा फिर सभी ब्राह्मण को फिर उद्धार किए, जो लोग सो निंदक थे इनको सब फिर आश्रय देकर शिष्य बनाकर फिर इनको उद्धार किया नरोत्तम दास ठाकुर। कुछ दिन के बाद वही गंभीला में फिर अपने शिष्य मने फिर आए अपने खेतरी ग्राम में, अपने विग्रहों को फिर दर्शन करके गए, फिर उसी के घर में गए गंभीला में अपने गंगा नारायण चक्रवर्ती के घर में। फिर उनको पता लगे कि नरोत्तम दास ने कौन कौन अंतर्ध्यान हो गए, श्रीनिवास आचार्य अंतर्ध्यान हो चुके हैं, रामचंद्र कविराज अंतर्ध्यान हो चुके हैं हैं, तभी तो श्रीनिवास आचार्य के अंतर्ध्यान में ही ये भजन उन्होंने लिखा था, जी आनी लो प्रेम धन करुणा प्रचुर। तब निर्णय लिए कि अभी मेरे को भी जाना है, मैं किसकी संग में रहूँगा, मेरे प्रिय संग कौन सा, कौन साथी, रामचंद्र कविराज चले गए और श्रीनिवास आचार्य चले गए, ये शरीर को कैसे क्यों धारण करूँगा। बड़े प्रेम में विहोल होकर निर्णय लिया कि मैं भी लीला में प्रवेश करूँगा। ऐसे कहकर उन्होंने कहीं गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की है। दोनों शिष्य उनके रामकृष्ण और गंगा नारायण चक्रवर्ती दोनों थे, कहे थे कि मेरे शरीर में पानी डालते रहो, गंगा के जल डालते रहो शरीर को घिसना है, और फिर पानी डालते डालते गंगा के जल डालते थे और वो उनके शरीर पूरा पिघल के जाता था, कैसे सफ़ेद सफ़ेद दूध की तरफ पिघलते रहा शरीर है। हठात उफान आया, जोर से उफान आया और वो कहाँ गया उनके शरीर हैं, कोई देखा नहीं दोबारा हैं। पद्मास नदी से वही गंगा के जल से ही इनके शरीर कृष्ण प्रेम वही शरीर प्राप्त हुआ था और कृष्ण प्रेम के शरीर वही गंगा में ही लीन हो गया। इसलिए उनके शरीर का समाधि नहीं है, नरोत्तम दास ठाकुर शरीर नहीं त्यागे हैं, इसलिए हमारे इधर गोकुलानंद मंदिर में उनकी पुष्प समाधि है। जो तो चले गए गंगा में, जो कुछ फूल फूल भास रहा था उनके शरीर से, तो उसी को लाकर फिर पुष्प समाधि दिया गया है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार महान संत हैं, कृष्ण प्रेम की मूर्तिमंत अवतार माने जाते हैं, जिनकी जिनके आविर्भाव की जो भविष्यवाणी कौन किया था, स्वयं गौरांग महाप्रभु ने किए थे। और तो उनकी एक विग्रह जो छह विग्रह उन्होंने स्थापना किया गौरांग महाप्रभु की स्थापना किए थे, वो तो धान के अंबार से बड़ा कहानी हो भी है, कैसे विग्रह प्राप्त हुए थे। वहाँ गोपालपुर प्रगणा में एक जमींदार के घर में धान के अंबार के अंदर में एक बहुत कोबरा विषाक्त सर्प रहता था, इसलिए भय से कोई जालते थे नहीं उसके। लेकिन एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर गए, उसका दर्जा खोल दिए, बोले महाशय मत जाओ, कटेगा सांप है बहुत विषण। लेकिन वो हंसे हंसते हुए जाकर हरे कृष्ण नाम लेते हुए गौरांग कहकर दर्जा खुलते ही कोबरा उसके अंदर था, निकाल के चला गया। नर्तम दष्ट को अंदर घुसे और उसके अंदर में गौर विष्णु प्रिया विग्रह को उद्धार किए, लेके आए। इस प्रकार 6 सेट के विग्रह उन्होंने निर्माण किए और आज उनके तिरुभाव, उनका एक विग्रह इधर है, वही 6 विग्रह से एक विग्रह इधर ज्ञान गुदड़ी में आए, दिनवंत प्रभु अनाउंस करते थे वहाँ पर। राधा ब्रजमोहन विग्रह इधर है, जिनको टाइम है तो जाके वहाँ दर्शन कर सकते हैं। और अनाउंस करते 1 बजे बड़ा फीस्ट है उधर, हमारे स्कन के द्वारा स्पॉन्सर होता है, इंद्रदेव महाराज और गिरिराज महाराज, ये लोग सब पैसा देते उधर जो फीस्ट वगैरह बनता है बड़ा बड़ा है। तो इसलिए जब टाइम है तो वहाँ जाके राधा ब्रजमोहन के दर्शन कर सकते हैं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभा महा महोत्सव की जय। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।